ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय आशा दीदी जी पहुंचे हैं। आप वो बाबा के नूरे रतन हैं जो सदा सेवा पर तत्पर रहते। मैं समझती हूँ आज सवेरे ही दिल्ली से पहुंचे हैं, सवेरे भी बहनों के साथ थे और शाम को हमारे बीच हैं। आपकी अहम भूमिका रहती है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए और यूं आप शायद बतलाने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं ओआरसी के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के चेयरपर्सन हैं और दूसरी तरफ कहूं अनुभवों की खान है। आपके पास सेवा का, दीदी दादियों के संग रहने का, बड़ों के करीबी का बहुत बहुत, ब्रजमन भाई जी के साथ, जगदीश भाई जी के साथ, यज्ञ के सभी पुराने रत्नों के साथ आपकी करीबी के अनुभव है। तो अब हमारे बीच हैं आज आप, हमें दिशा देने के लिए अंतिम समय की तैयारियां आशा दे दीजिए। से अभिनंदन करेंगे दीदी का।
ओम शांति। मधुबन के आंगन में कदम रखते ही अपनी वो सब पुरानी यादें बचपन से लेकर आज दिन तक की इमर्ज हो जाते हैं। यही वह मधुबन है जहां 1959 में पहली बार आना हुआ और उस समय धरती पर बैठकर धूल मिट्टी की जमीन पर प्यारे मम्मा और बाबा के मधुर महावाक्य मुरली के रूप से सुनते थे। कुछ भी उस समय नहीं था लेकिन बाबा की तपस्या ने, दादियों की तपस्या ने आज मधुबन को यादगार बना दिया है। चरित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, बाबा की हर कर्म को चरित्र के रूप से देखना हो तो यहां देख सकते हैं। यज्ञ क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, परिवार क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वो सब यहीं पर पनपा है। अगर उस इतिहास में चली जाऊंगी तो बहुत तो सारा समय शायद घंटों उसी में बीत जाएंगे। यही वो हॉल है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी समेत नरसिम्हा राव जी थे, ज्ञानी जैल सिंह जी थे, वेंकट रमन जी थे, राजीव गांधी जी सब इस हॉल में आए और यहां पर उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। आज उस यादगार को बना करके रखना हम सबका परम कर्तव्य है। बड़े यादगार बना के गए, उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन उस यादगार को कायम रखना ये किसका काम है? मुझे एक गीत की लाइन बहुत अच्छी लगती है कि बाबा और दादियां कहते हैं, हम लाए हैं तूफान से इस यज्ञ की किश्ती को निकाल के, अब इसको रखना प्यारे भाई बहनों संभाल के, ये हमारा कर्तव्य है। वो क्या चीज थी, क्या चीज थी जो अंतिम समय की तैयारी में भी आवश्यक है? जब हम अंतिम समय कहते हैं तो प्रश्न उठता है, किसका अंतिम समय? सृष्टि का, यज्ञ का या मेरा? अंतिम समय की तैयारी, तो कौन सा अंतिम समय? क्या हम महाविनाश की इंतजार करेंगे? उस समय क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हम उसकी पूर्व तैयारी करेंगे? जैसे बड़े बड़े देशों में विनाश के समय, बमबारी के समय लोगों को कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। वो बैग्स दिए जाते हैं कि इनको आप पहन लेना। मैं इज़राइल में थी तो वहां पर कभी भी सायरन बज सकता है, तो बहनों ने दिखाया कैसे बेसमेंट में कमरे के अंदर कमरा। अगर उसकी कल्पना अभी मैं करूं तो दम घुट जाएगा, लेकिन उस वक्त उसी में से निकल करके बाहर आना होगा। इतनी क्या वो ट्रेनिंग है? अंतिम घड़ी अपनी तो पता नहीं कब आ जाए, उसकी पूर्व तैयारी आवश्यक है ताकि अंतिम घड़ी मेरी सुहेली हो। तो किसकी अंतिम घड़ी? किसकी कहें? दोनों की ही कही जाए एक रीति से। वापस भी तो जाना है, और अपन ने कब वापस जाना है कोई भरोसा नहीं है, तो अपनी भी तैयारी करनी है। बाबा ने अंतिम समय के बारे में बहुत कुछ बातें बताई हुई हैं। अगर आप अव्यक्त रूप की चली हुई मुरलियां 69 से लेकर के पढ़ना शुरू करें तो स्पष्ट शब्दों में बाबा ने भविष्य का चित्र खींचा हुआ है। मैं समझती हूँ शुरू की तीसरी चौथी मुलाकात के बाद बाबा ने पहली बार कहा, आखिर भी व्यक्त रूप में अव्यक्त का मिलन कब तक, 69 में ही कहा। और आज हम देख रहे हैं बाबा के वे इशारे धीरे 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 एक एक चीज अपनी आंखों के सामने उजल हो रही है। बाबा कहते थे बच्चे मुरली और टोली, दृष्टि ये तो तुम्हें मिलेगी। साकार रूप से अब ऐसा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये तो तुम्हें मिलेगी क्योंकि नंबर बढ़ता जाता, ये तो तुम्हें मिलेगी। फिर कहा मुरली और दृष्टि, फिर कहा दृष्टि, आज हम कहां आके पहुंचे, दृष्टि तक आए। क्या हम समझें अंतिम समय करीब है? डेफिनेटली करीब है। इस अंतिम समय के लिए उसे हम फेस कर सकें, बाबा ने चार प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये हमारी अंतिम प्राप्ति की स्थिति है कि अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति स्वरूप हो गया। परंतु जो पेपर है, परीक्षा है, जिस परीक्षा से हम सबको गुजरना है, वो कौन सी? में चार प्रश्न थे। पहला, बाबा ने कहा जो संस्कार तुम बच्चे समझते हो हमने जीत लिए हैं, पास हो गए हैं, वही संस्कार उथल खाएंगे, री इमर्ज होंगे। दूसरी बात, मैं पहले चारों प्रश्न बताती हूं फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी। दूसरी बात, बाबा ने कहा जिनको तुम अपना समझते हो, जिनको तुम अपना समझते हो, उनसे ही तुमको धोखा मिलेगा। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं, और चौथा Evil souls, ये पार्ट चलेगा। अब ये चारों परीक्षाएं हमें देनी है, उसके लिए तैयारी क्या है? पहला, जो संस्कार तुम समझते हो मैंने जीत लिए हैं वो रीइमर्ज होंगे, फिर से आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, क्या करना है जी? ज्वालामुखी। और बोलिए जी, संगठन, अटेंशन, अलर्ट। और याद। सुनिए, बाबा ने जब ये कहा ये री इमर्ज हो सकते हैं, उसका अर्थ है कि मैंने उन्हें बीज सहित समाप्त नहीं किया है। अगर बीज सहित समाप्त हो तो दोबारा कैसे आएगा? हर संस्कार के दो रूप होते हैं, एक होता है सूक्ष्म और गुप्त रूप और दूसरा होता है मोटा रूप, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को सहज जीत लेते हैं, उसके ऊपर शिक्षा भी मिलती है, मुरली भी मिलती है, क्लास भी मिलती है, टीचर धारणा भी पूछती हैं, वो हम जीत लेते हैं। लेकिन जो उनके बारीक रूप हैं, जिसको हम कहते हैं कैंसर होता है ना, तो कैंसर में क्या कहते हैं डॉक्टर्स, हमें बहुत ध्यान से देखना है, कोई टिश्यू ना रह जाए, कोई ये चीज ना रह जाए, हर एक को निकालना है, अंग कोई काट देते हैं ताकि बचे ही नहीं। ऐसे हम अपने आप से पूछें, क्या सच में जो भी संस्कार मोटे मोटे मैं समझती हूं मैंने विजय प्राप्त की है, उनके सूक्ष्म रूप अंश रूप में इन्फेक्शन के रूप में कहीं छिपे हुए बैठे तो नहीं है? और ये बात 100% सच है। अगर अंश नहीं है तो वृद्धि हो नहीं सकती। मानो काम है, अब काम मोटे रूप से तो हमने जीत लिया, परंतु उसका सूक्ष्म रूप बाबा ने बताया, ऐसा नहीं नहीं बताया। इच्छा, इच्छा को भी छोड़ो, अच्छा लगना, ये मुझे अच्छा लगता है, ये कार्य मुझे अच्छा लगता है, तो योगी तो नहीं हुए ना परफेक्ट। अगर कुछ मुझे अच्छा लगता है तो कुछ मुझे अच्छा नहीं भी लगता होगा ना, योगी की स्टेज तो नहीं हुई ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसकी गहराई में जाके अंश सहित सफाई कर, तो ये खतरा है री इमर्ज होने का, अन्यथा कोई कारण नहीं ये क्यों री इमर्ज हो। अब इसके लिए क्या करो? जो जो मेरे संस्कार सदा के लिए परिवर्तित हो जाएं, उसके लिए क्या करूं? बाबा ने फॉर्मूला के रूप से तीन बातें इकट्ठी इकट्ठी बताई। जब मैंने वो मुरली पढ़ी, मेरा बाबा ने कितना इजी करके तीन बातें बताई हैं, स्पष्ट। और आजकल मैं वो बता रही हूं अपनी क्लासेस में, ये बातें मैं रिवाइज कर रही, रिपीट कर रही हूं। पहली बात, जो भी संस्कार आप समझते हो हमने जीतना है, अपने से ये पूछो, क्या उस संस्कार से दिल का अविनाशी सदाकालीन वैराग्य है? ये नहीं कि ये प्रिंसिपल है, रूल है, नियम है, ये नहीं कि ये हमारी मूल धारणा है, ये नहीं, लेकिन दिल का अविनाशी वैराग्य उस संस्कार से है। हर कोई चेक कर लेना, अगर वैराग्य है तो वो संस्कार जला हुआ है, अविनाशी वैराग्य नहीं है और दिल से नहीं है तो रीइमर्ज होने की संभावना है। दूसरी बात, जो बाबा ने सवेरे से लेकर रात्रि तक दिनचर्या बना करके दी है, क्या उस दिनचर्या को एक्यूरेटली दिल से फॉलो करती हूं? दिल से अगर मेरी दिनचर्या ठीक नहीं है, बाबा के शब्दों में मैं बता रही हूं, बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, अगर दिनचर्या का ठीक पालन नहीं है तो ये भी अपवित्रता है। ये भगवानों वाच है मुरली में। भगवान के द्वारा दी दिनचर्या का पालन हो रहा है या मनमाना हो रहा है? चेक कर लो। तीसरा, बाबा ने कहा पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करो, दान पुण्य करो। ग्रहण लगता है ना तो दान देते हैं हम। ब्राह्मणों को दान नहीं देते हैं, ना ब्राह्मण दान लेता है ना ब्राह्मण दान देता है, लेकिन बाबा ने कहा ब्राह्मणों के साथ पुण्य कर्म करो। वो कैसे? दान है जो आपके पास है वो आप दे रहे हैं, और पुण्य है जो आपको जरूरत है वो मैं दे रही हूं। फर्क देखा? दान वो है जो मेरे पास है वो मैं दे रही हूं, और पुण्य उसे कहते हैं जो आपको जरूरत है वो मैं दे रही हूं। तो बाबा ने पुण्य कर्म कहे हैं, वो पुण्य कर्म किस रूप से? बाबा ने कहा है ब्राह्मणों को सहयोग देना पुण्य कर्म है। ब्राह्मणों को सहयोग कैसे देंगे? कैसे देंगे? ब्राह्मणों को सहयोग कैसे देंगे? सुनिए, क्या हम ब्राह्मणों के साथ धन की लेन देन कर सकते हैं? अलाउड है? तो ये तो नहीं करना है, ठीक है? फिर क्या सहयोग देंगे? सुनो, अगर कोई हिम्मतहीन है तो उसको हिम्मत देना, अगर कोई निराश आशा की किरण देना, अगर कोई उमंग उत्साह से विहीन है उमंग उत्साह का बल देना, ये है ब्राह्मणों को सहयोग देना पुण्य कर्म करना। गुणों की लेन देन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो मेरे संस्कार इमर्ज होने की संभावना रखते हैं उनको मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवा भी कर रही हूं, याद भी कर रही हूं, और उसके साथ साथ पुण्य कर्म भी कर रही हूं, अलर्ट। दूसरी बात बाबा ने कही कि जो जिनको आप अपना समझते हो ना, उनसे ही धोखा खाओगे। आप सबका अनुभव क्या कहता है? लोग क्या कहते हैं? बहन जी, परायों से कम खतरा होता है, अपनों से ज्यादा खतरा होता है। क्यों? वो आपको पूरा अच्छी रीत से जानते हैं, और आजकल सुनने में आता है ना, अरे ये इतना घी शक्कर थी, अब क्या हो गया, एक दूसरे का मुंह देख के राजी नहीं है। मिसाल आते हैं आप लोगों के आगे? नहीं आते हैं? आते हैं ना, ये इतना मिली भगत थे, अब इनको क्या हो गया है? अच्छे अच्छे बरसों से इकट्ठे, जिनको कहा जाए एक ही कॉइन के दो हिस्से, जब उनको कहो भी तुम अलग हो जाओ, तुम वहां जाओ, जाने को राजी नहीं, अपने आप, क्योंकि ज्ञान के विपरीत था ना, ज्ञान के विपरीत होता है ना, तो अपने आप ही फिर परिस्थितियां कोई ना कोई दिन आकर के अटैक कर जाती हैं, अलग हो जाती हैं। फिर क्या कहते हैं, हमने तो सोचा नहीं था, हमने तो ऐसा समझा नहीं था। जिसको मैं अपना इतना मित्र समझती थी वही मेरे को धोखा दे गया। और धोखा पराया थोड़ी देता बेचारा, उससे तो थोड़े बहुत हिसाब किताब होते हैं। जो आपके साथ रहा वही तो सारे हिसाब किताब निकालेगा आपसे, वही तो निकाले जिसके साथ आपने दिल की लेन देन की हुई है, जिसके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से आपने बातें की हुई हैं, सारे भेद खोले हुए हैं। परायों से थोड़े खोलोगे आप, अपनों से खोलोगे ना, तो वो सामने आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, न मैं किसी की न कोई मेरा। इसको पक्का करो ना, पक्का करो ना। दिलाराम दूसरे को क्यों बनाते हो? अच्छा भला पता है धोखा मिलेगा, फिर दिलाराम बना के बैठ जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा चार प्रकार का बल चाहिए, क्योंकि जिस समय धोखा मिलता है ना, उस समय आत्मा की हालत देखी नहीं जाती है। इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, बात मत पूछो। तो चार प्रकार का बल इकट्ठा करना है। एक है जिसको हम कहते हैं याद का बल, याद का बल। याद का बल। दूसरा स्नेह का बल। तीसरा सहयोग का बल। और चौथा सम्माने का बल। अगर मिसाल देखना है तो गुलजार दादी को आप देख लीजिए, जिसमें चारों चीजें दिखाई देती हैं। पूरी ज्ञानी तो आत्मा है, आज वीडियो कॉल किया, दादी लाइन पर थे, दादी को मैंने कहा दादी बहुत दिन हो गए मैं मिली नहीं हूं, बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो गई हैं आपसे, आपके साथ मेरे को बहुत सारे काम हैं, तो मैं कब आऊं? आप उनका उत्तर सुनिए। नीलू बहन को कहती हैं इसको को टाइम लेकर के आए, कायदे अनुसार अपॉइंटमेंट लेकर के आए, समझा? निश्चिंत है। नीलू बहन ने कहा दादी देखा अब ये दिल्ली में मस्त हो गई है, अब ये आपको पूछती भी नहीं है। कहती नहीं इसको कोई काम नहीं होगा ना मेरे से। इसलिए ज्ञान का उत्तर। और दादी संदेशी है, संदेशित है, दुनिया भर के संदेश यज्ञ संबंधित भिन्न भिन्न आत्माएं अपने अपने प्रकार के संदेश देती थी कि बाबा से इसका उत्तर लेकर के आओ। दादी दुनिया भर के संदेश लेके आते थे। क्या कभी आपने दादी के मुख से, चेहरे से, व्यवहार से, देखा कि इसके लिए ये संदेश आया था तो दादी के चेहरे पर आ जाए। ये है सम्माने का बल। दादी सुनाते थे, आज इतनी आत्माएं बाबा से मिलती थी, हमने आंखों देखा, हम रात रात बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा के हाथ में टोली देते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं बाबा के सामने आती थी। बाबा कभी कभी दादी से पूछते थे, दादी आपको बिल्कुल नहीं पता चलता, तो दादी कहते कभी कभार बाबा थोड़ा सा सीन दिखा देता था, अन्यथा नहीं। इतनी सारी आत्माएं अपने अच्छे बुरे पर्सनल व्यक्तिगत सोशल क्या क्या दादी बाबा के साथ बात करते थे, अगर दादी सब कुछ सुनती और अपने उसमें रखती तो दादी अपना ये पार्ट प्ले कर सकती थी। मिसाल है। और बाबा ने दादी को इस बात पर सर्टिफिकेट भी दिया है कि इस बच्ची में समाने की शक्ति है, वो बल है। इतना बल हमारे में है, हम तो बताए बिना रहते नहीं है। और हरेक का कोई ना कोई कन वजीर होता जरूर है। कन वजीर समझते हैं ना, किसी ना किसी हर एक का कोई ना कोई एक आत्मा स्पेशल होती जरूर है। देखो मैं तुमको बता रही हूं, आगे नहीं बताना। तो ये कभी होता है, दादी गुलजार तो बहुत अच्छी एक कहानी भी सुनाते थे, दो कहानियां, गुड़ियों की कहानी भी आपने सुनी होगी जिसकी कीमत अलग अलग होती थी, और वो जो पेड़ों को जाकर के सुनाते हैं, पेड़ों को जाके बोलते ना राजा के दो सींग, सुनिए ना। हाँ, राजा के तीन भिन्न भिन्न प्रकार सुनिए, सुननी है तो कन रस है। एक राजा था, उसके ना दो सिंह। अच्छा, बाय द वे सिंह की बात कर रही हूं, मैंने अखबार में पढ़ा ये मोबाइल के यूज से छोटे बच्चों के सिंह निकलने शुरू हो गए। मोबाइल का इतना यूज कर रहे हैं जो सींग निकलने शुरू हो गए हैं, इसलिए संभाल करना। तो सच्ची बात बताएं, अखबार में पढ़ा मैंने। तो उस राजा के दो सींग थे, बाल उसके थे लंबे, तो वो नाई आता था ना, सारे गांव के जो नाई थे बारी बारी कर उनको मरवा देता था, सब नाइयों को मरवा दिया। नाई समझते ना बाल काटने, बार बार। तो अब सारे नाई तो खत्म हो गए, क्योंकि वो लोग जाके वर्णन करेंगे तो उनको मरवा देता था। अब एक नाई बचा, उसने कहा मैं क्या करूं, अब मेरी बारी है। तो उसने बाल काटते हुए राजा की बहुत महिमा की, राजन आपके बाल बहुत अच्छे, अगर ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। राजा ने मान लिया, लेकिन उसने वो जो दो सींग देखे अब उसके पेट में बचे नहीं। अब क्या करना है, गया किसको सुनाए, जिसको सुनाएगा फैलेगा और मौत की सजा मिल जाएगी मेरे को। तो वो जंगल में चला गया, जंगल में गया और जोर जोर से बोला उसने, राजा के दो सींग, राजा के दो। तो पेड़ों ने भी सुना, धरती ने भी सुना, सबने सुना, पशु पक्षी सबने सुन लिया, राजा के दो सिंह। अब थोड़े समय के बाद राज दरबार में एक संगीत संध्या हुई और उसमें नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए। जो इंस्ट्रूमेंट्स आए तो उस पर गायन होना था, तो जब वो बजने लगे हारमोनियम बोला राजा के दो सिंह, तबला जो था उसने बोला किन ने कहा, तीसरा तंबूरा जो था उसने बोला बब्बन हजाम, राजा ने कहा ये कैसे हुआ, इसको ये कैसे पता लगा। तो बात कहीं भी छिपती नहीं है, समाने की शक्ति। इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम यूज करते हैं, समाने की शक्ति को। पारस्परिक संबंध जब हमारे बिगड़ते हैं, धोखे वाली बात चल रही है ना, जब पारस्परिक संबंध बिगड़ते हैं और हमें धोखा मिलता है तो उस समय जितना हो सके समाना होता है। लेकिन बहु काल से अगर समाया हुआ नहीं है तो क्या होगा, इमर्ज हो जाएगा। तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं, और ये भी पेपर पास करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने बताया है मेरे वे बच्चे जो योग युक्त होंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, वॉइसलेस कनेक्शन होगा, ऐसे बच्चों को बाबा मदद देने के लिए बंधा हुआ। एक बार हमने गुलजार दादी से कहा, दादी आते थे जैसे भट्टी चलती है ना, आजकल तो बड़े ग्रुप हो गए, उस समय तो हम लोग बहुत थोड़ी बहनें होती थी, तो चार चार पांच पांच का ग्रुप बन जाता था और हर ग्रुप में कोई ना कोई बड़ी दादी आती थी। तो गुलजार दादी हमारे ग्रुप में आए तो हमने दादी को कहा, दादी अंत में वर्षा होगी, बाढ़ होगी, पानी यहां तक आएगा, हमारे घर में नहीं आएगा, हमारे सेंटर पर नहीं आएगा। दादी ने कहा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है पानी ना भी आए। और हमने मिसाल सुने भी हैं, जापान में अर्थक्वेक आया, सब कुछ हिला, बाबा का कमरा वैसे का वैसा रहा। कैसे हुआ? और भी कई स्थान हैं जहां बाबा के कमरे को, सेंटर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा, वो कैसे हुआ? जो हम आत्माओं की तपस्या है, श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प है, जो संगठित रूप में बैठ करके हम वहां पे तपस्या करते हैं, उससे वायुमंडल बनता है और कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। फिर दादी ने कहा कि हमें निश्चय चाहिए, लाइन क्लियर चाहिए। अहमदाबाद में एक बार बाढ़ आई, बहनें देख रही हैं आंखों से बाढ़ आई, बाबा से इन्होंने कुछ ऐसा पूछा नहीं, परंतु आंखों से देख रही हैं कि सामान जा रहा है, सोफा आके वहां पर अटक जाता है, कई सामान बचा भी लेता है। लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कह रही है आप आ जाओ, घर खाली कर दो, नहीं नहीं बाबा हमें बचाएगा। ठीक है, बहुत समय बीत गया, दो दिन के बाद मैंने ऊपर चली गई थी छत पे, तो जब बाबा को भोग लगाया, सब ठीक हुआ, बाबा को भोग लगाया तो बाबा को कहा, बाबा आपने हमें इशारा क्यों नहीं दिया? बाबा ने क्या संदेश दिया? बच्चे मैं तो तुमको इशारे दे रहा था लेकिन तुमने समझा ही नहीं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें। क्लीन रखें। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस भट्टी से ये जो हमारी कंप्लेंट, व्यर्थ संकल्प, कब तक हम इसका गुणगान करेंगे? पहले तो हम इनको सामान्य समझते थे, नॉर्मल समझते थे। जब बाबा का ज्ञान मिला, समझ मिली, तो आया कि ये व्यर्थ संकल्प है, ये हमारे नहीं होने चाहिए। तब हमने एक्नॉलेज किया, लेकिन व्यर्थ समाप्त भी तो करने हैं ना। व्यर्थ संकल्प हो और मैं अपने अंतिम पेपर की तैयारी में लगूं, होगा? इनको खत्म करना, और खत्म करने का तरीका है समर्थ संकल्पों का मनन और चिंतन, अपनी बुद्धि को और स्वयं को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरिली बिजी रखना। जो फ्री होता है, फालतू होता है, व्यर्थ संकल्प उसके पास ही आते हैं। जो अपने आप को बिजी रखना जानता है, जो अपने आप को मानसिक रूप से बिजी रखना जानता है, माया आती है, खटखटाती है, देखती है तो बहुत बिजी है, चली जाती है। क्या हम अपने आप को इतना व्यस्त नहीं रख सकते? शारीरिक रूप से भी बिजी रखिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, और मानसिक रूप से भी अपने आप को बिजी रखिए। जो बिजी होगा उसको व्यर्थ की चीजों की तरफ अटेंशन जाएगा ही नहीं। लाइन क्लियर और क्लीन होगी, तब बाबा की कैचिंग हम ले सकेंगे। और अगर व्यर्थ चल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो बेस्ट साधन है बाप दादा के महावाक्यों को बारंबार पढ़िए। दो बार सवेरे पढ़िए, दो बार शाम को पढ़िए। और अपनी सोच को बदलिए कि अब मैंने यहां रहना नहीं है, यहां से जाना, मेरा लंगर उठा है, जाना है। जाना है तो कैसे जाना है? बोझ उठा के जाना है या फरिश्ते के रूप से जाना है? ये चॉइस हमारी है। इसलिए अपने ऊपर ये अटेंशन। प्रकृति के वशीभूत नहीं होना है। ये शरीर प्रकृति है, आत्मा का शरीर के साथ टू मच अटैचमेंट है। आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती। जिनकी टू मच अटैचमेंट होती है, सांस निकलने में भी मुसीबत होती है। उसके लिए बाबा ने हमें बताया कि बच्चे क्या करो, शरीर में आओ, शरीर से जाओ, शरीर में आओ, शरीर से जाओ, और शरीरीपन का अभ्यास करो। अगर कपड़ा टाइट होगा तो उतारना कठिन होगा ना, लाइट होगा ठीक होगा सहज उतर सकता है। समय कम है, नहीं तो मैं आपको स्टोरी सुनाती दादी पुष्प शांता की। दादी पुष्प शांता हमारे महाराष्ट्र की जोन इंचार्ज थी। बाबा उसको जापानी गुड़िया कहता था। बेगरी के पाठ के समय उनका बहुत सहयोग यज्ञ में रहा, उनके बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा। मखमल पर उनको रखते थे, इतनी दादी हमारी रिच फैमिली की थी। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको पता लग गया था फलाने दिन फलाने टाइम पर मैंने जाना है। दादी को उस अनुसार हार्ट में तकलीफ हुई। रमेश भाई ने कहा दादी हॉस्पिटल चलना है। बोले हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है, रमेश भाई तो रमेश भाई थे। उन्होंने कहा नहीं चलना तो होगा दादी, ऐसे तो नहीं है, हार्ट में तकलीफ है। लेके गए हॉस्पिटल में, उनकी ब्रह्मणी सवेरे आई तो दादी कहती है अभी तुम क्यों आई हो, अभी मुझे जाने में 2 घंटे हैं, जाओ और सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की सेवा करके आओ। वो बिचारी चली, फिर आ गई। दादी ने कहा तुम फिर आ गई, जाओ अभी इतना टाइम पड़ा है, आधा घंटा पड़ा है, सेवा करके आओ। फिर चली गई। बॉम्बे के लोग आने शुरू हो गए। दादी ने उनको भी बोला आप लोग क्यों आए हो, अभी तो इतना टाइम पड़ा है। सबको हटा दिए, एक बाबा, एक बाबा। और जब जाने का टाइम आया बहनों को बोला गीत लगाओ, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। उधर वो गीत लगता है, उधर दादी उड़ जाती। ये क्या है, अपनी इच्छा से और शरीर के भान से बिल्कुल न्यारी। एक बाबा दूसरा ना कोई। मुझे पता लगे कि मेरे जाने में 10 दिन हैं तो मैं क्या करूंगा, अपनी सारी कारोबार में लग जाऊंगी, फिनिश करो फिनिश करो फिनिश। फर्क है ना दादियों में और हमारे में। इसलिए बाबा ने कहा ये प्रकृति इसके भी विजयी बनो। प्यारे भाई और बहनों, एक चीज है जो भगवान ने आदि में यज्ञ स्थापना में बीज में डाली है, वो कहीं बीज गुम हो गया है, अब रिवाइव करने की आवश्यकता, वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी की एक एक्सरसाइज आपको बताती हूं जो आप सब करना। आपके पास फिजिकली और मेंटली ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप आराम से छोड़ सकते हो लेकिन अभी तक रखी हुई हैं। फिजिकली भी बहुत कुछ रखा हुआ है, मेंटली भी रखा हुआ है। आप लोग लिस्ट बनाना अकेले में बैठ के लिस्ट बनाना, क्या क्या चीजें मेरे पास है जिनके बिना मेरा जीवन चल सकता है। मेंटली क्या क्या है जिनके बिना चल सकता है, क्या मैं उनको छोड़ सकती हूं, यदि हां तो छोड़ दीजिए। प्रकृति जीत, साधन मुझे गुलाम ना बनाए, साधन मेरी साधना ना तोड़े। आज ठंडी, आज गर्मी, आज बरसात है, आज ये है, नथिंग। मैं प्रकृति पति हूं। अपने स्वमान को हमें जागृत अवस्था में रखना होगा, क्योंकि इनका सामना हमें करना है। जैसे साइंस पृथ्वी के आकर्षण से परे जाने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से परे जाने के लिए साधन अपनाती है, हमारी है साइलेंस। अंतिम स्वरूप मेरा फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते, धरती है प्रकृति। ठीक है। चौथा पेपर, इविल सोल्स। क्योंकि मौत का बाजार गर्म होगा, अकाल मृत्यु होगी, इकट्ठे इकट्ठे मौतें होंगी, हिसाब किताब चुक तो नहीं होंगे। तो आत्माएं हिसाब किताब चुक तो करने आएंगी। इसलिए जितना मैं अपने हिसाब किताब वर्तमान में क्लियर कर लूं, दो काम करने हैं। पास्ट के हिसाब किताब चुकतू करने हैं और नए हिसाब किताब बनाने नहीं हैं। आज की डेट में मैं अपने नए फ्रेंड्स बनाऊं, नए हिसाब किताब बनाऊं, क्यों? लास्ट में जो बैंकर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। बैंकर मनुष्यात्मा नहीं है, बैंकर बाबा है। अब मेरे सारे अकाउंट्स बाबा के साथ होने चाहिए। अलग न्यारे नहीं होने चाहिए, आत्माओं के साथ नहीं होने चाहिए। और अगर हैं, उन्हें क्लियर कर लीजिए। एक तरीका क्लियर करने का है पारस्परिक बातचीत करके, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कुछ भुलाना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है। क्षमा करो और भूल जाओ। फिर साथ साथ अपने बहु काल से तीन वृत्तियां हमारे पार्ट में होनी चाहिए। उपराम, वैराग्य और साक्षी दृष्टा। पहला है वैराग्य, आध्यात्मिक पथ पर शुरुआत जीवन की वैराग्य से होती है। बुरा नहीं मानना, जब हम ज्ञान में चलते हैं वैराग्य वृत्ति बहुत प्रबल होती है। धीरे धीरे संग के रंग में आते हैं, आंखों से दिखता है, सूक्ष्म रूप से रूप रंग गंध स्वाद स्पर्श और रस। और अगर सूक्ष्मता में चलना है तो एक शब्द और है, दादी चंद्रमणि जी से हमने वो सीखी बात, वो है शौक। शौक, शौक वो वाला नहीं लेकिन इंटरेस्ट। इन सातों से अपने आप को मुक्त करिए। आज चेक करिएगा, रूप रंग गंध स्वाद स्पर्श रस और शौक, सब में वैराग्य है। वैराग्य से संग के रंग में आके कहीं राग में तो नहीं आ जाते? चेक कर ले। दूसरा बताया उपराम वृत्ति, बाप समान, करना भी सब कुछ है परंतु उपराम हो गया। और तीसरा है साक्षी दृष्टा। कई बार साक्षी दृष्टा से हम लोग समझते हैं हर एक इसको देख रहे हैं, मैं तो साक्षी हूं, हम तो जी साक्षी होके पार्ट देख रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसा, साखी मैंने नहीं कहा है। साक्षीपन में कल्याण की वृत्ति है वो चेक करो। असली साक्षीपन में कल्याणकारी वृत्ति होनी चाहिए। बहु काल का ये अभ्यास चाहिए। ठीक है, अंतिम पेपर के लिए नई सोच, मेरे में ये कमी है ये कमी है ये कमी है, नहीं, अपनी कमियों को ध्यान पर रखा है काफी है, उसकी कॉन्शियसनेस में मत आइए। कमी के बजाय अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करें। मैं फरिश्ता हूं, अवतरित आत्मा हूं, मैसेंजर हूं, ये स्वरूप अपना लाए। जितना जितना प्रकाश आएगा अंधकार समाप्त होगा, जितना जितना संपूर्ण स्वरूप धारण करते जाएंगे आपका वो खत्म होता जाएगा। ठीक है, लास्ट बात, हम सब नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा का जब कर्तव्य वर्णन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बाबा क्या करते हैं, बाबा का कर्तव्य वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा क्या करते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, सुनो, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना यही करते हैं, अधर्म का नाश सत्य धर्म की स्थापना। हम भी बाबा के बच्चे बाबा के साथी हैं ना, क्या अधर्म के नाश की तरफ मेरा ध्यान है, अधर्म क्या है दुनिया के हिसाब से छोड़ दीजिए, हम ब्राह्मणों के लिए अधर्म क्या है, ये होमवर्क देती हूं, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अधर्म क्या है, इसको नोट करिएगा, फिर बहनें आपसे क्लास करा लेंगी, अधर्म क्या है और सत्य धर्म क्या है। सत्य धर्म पर हमारा अटेंशन है, क्या अधर्म के विनाश की तरफ हमारा अटेंशन है, बाबा ने ब्रह्मा को क्या कहा, ब्रह्मा है इंद्र, इंद्र है ना, इंद्रिय जीत, कैसे इंद्रिय जीत बना, कैसे बना, जब बाबा ने अपनी सर्व कर्मेंद्रियां बाबा को सौंप दी, शिव बाबा को सौंप दी, देवताओं के फरिश्तों के क्या होते हैं, नैन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, सब कुछ होता है ना? वो हमारा पार्ट कब होगा, ये अंतिम पुरुषार्थ में ये चीज अभी लाइए अभ्यास में, ये मेरी कर्मेंद्रियां बाबा को समर्पित हैं, प्यारे बाबा आप इनके द्वारा अपना कर्तव्य कर सके, दिल से समर्पित हो, बाबा ने जो कहा चलन और चेहरे द्वारा सेवा वो कब होनी है, अंतिम समय के है ना, ये भी तो काम है ना, पेपर देना है लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम भी तो है ना। इसके लिए भगवान उवाच है, इसकी डिटेल है, मैं अभी समय को देखते शॉर्ट कर रही हूं, आप लोग मनन चिंतन में लीजिएगा। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है, तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे कर्म, ये तीनों ही इकट्ठे सेवा करें। तीनों की इकट्ठी होनी चाहिए, मन से निराकारी बनेंगे, वाणी से निरअहंकारी, कर्म से निर्विकारी। अंतिम तीन शब्द हैं बाबा के। इस स्थिति के लिए ये अपने तीन हमको यूज करने, मनसा, वाचा और इकट्ठी सेवा। ये नहीं अभी मैं मनसा सेवा में बैठी हूं, अभी मैं भाषण कर रही हूं, अभी मैं यज्ञ सेवा कर रही हूं, नहीं, तीनों को इकट्ठे इकट्ठे करना। ये है हमारा अंतिम समय का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, आप लोग भी आ जाओ।
अब हम योग करेंगे 7:30 तक, और दीदी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दीदी जी ने मैं बहुत गहराई से इस को हमें समझाया है, इस यूं कहें आज के सेशन को, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम इसी स्मृति से उड़ चलेंगे बाबा के पास दीदी के साथ, सब साइलेंटली बैठेंगे। पुनः एक बार थैंक्स दीदी का, सभी हाथ हिला के थैंक्स तो करो।
Be mine.